वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। हम इस तीसरे अध्याय के अब अंतिम चरण के अंतिम कुछ श्लोकों तक पहुंच गए हैं। अगले बुधवार को इस अध्याय का अंतिम श्लोक हम लेंगे। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए काम वासना के विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि ये जो शत्रु है इसके निवास स्थान क्या है, इसके कार्यकलाप क्या है, इसका प्रकोप क्या है और इसके वशीभूत होने का परिणाम क्या है। तो जब भगवान ने निवास स्थान बताया काम वासना का, तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि काम वासना किसी मनुष्य के शरीर में केवल उन तीन स्थानों पर ही है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों के द्वारा मनुष्य शरीर के अंदर जो काम वासना सब जगह पर विद्यमान है, ये तीनों जगह के से उसके आउटलेट से निवास स्थान और निकास स्थान। निकास स्थान मतलब आउटलेट्स। तो भगवान ने अब तीन निवास स्थान बताने के पश्चात फिर इन तीनों स्थानों के विषय में तर्तम्य न्याय से अर्जुन को समझाया कि कौन सा स्थान अपने आप में कौन से स्थान से श्रेष्ठ है या निम्नतर है। तो हमने भाग एक लिया था इस श्लोक का, आज हम इस 42वें श्लोक का भाग दो लेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहोर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। अनुवाद इस प्रकार से, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों इन तीनों से भी बढ़कर है। तो जैसे हमने पिछले बुधवार को ये एक मुद्दा समझाया था कि हमें ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि इस श्लोक में भगवान केवल हमें सूचित कर रहे हैं ये जो तीन निवास स्थान हैं इंद्रिय मन और बुद्धि, इनके पोजिशन के बारे में भगवान केवल सूचित कर रहे हैं। डोंट कंसिडर दैट दिस श्लोका इज जस्ट सम इंफॉर्मेटिव श्लोका, खाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। अगर इस एक श्लोक को हम समझकर जीवन में अपना लें तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं। तो पिछले बुधवार को हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से थे, श्लोक से संबंध 41वें श्लोक से संबंध, प्राणी शब्द की व्याख्या, इस श्लोक के द्वारा भगवान ने तरतम्य न्याय से तीन स्तर पर मनुष्य शरीर की रचना समझाई। इस श्लोक पर श्रीपाद वल्लभाचार्य की टीका, इस श्लोक का पतंजलि एवं नारद भक्ति सूत्रों से संबंध, तो ये हमने पिछले बुधवार को इसकी चर्चा की थी। आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, काम शत्रु की तुलना दुर्योधन से की गई है, मन के अनियंत्रित होने के 8 कारण, अर्जुन के मन की व्याख्या पर भगवान का कथन, स्थूल की तुलना में सूक्ष्म की शक्ति कैसे अधिक होती है, श्रील प्रभुपाद की विशेष व्याख्या, अघासुर वध लीला से मन पर नियंत्रण की विधि, यह हम कैसे समझें। तो सबसे पहले हम पिछले श्लोक से संबंध फिर से एक बार समझ लें। काम शत्रु पर विजय की विधि योगियों के लिए भगवान ने पिछले श्लोक में समझाई, और आज के श्लोक में काम शत्रु पर विजय की विधि भक्तों के लिए। अब तक ये प्रश्न हमने इसका उत्तर जवाब नहीं दिया है विस्तार से कि आज के श्लोक में कैसे भक्तों के लिए विधि बताई है और पिछले श्लोक में योगियों के लिए विधि बताई। तो जो प्रभुपाद की व्याख्या, जिसकी चर्चा हम अंत में करेंगे, प्रभुपाद की व्याख्या से समझ में आएगा कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो दुर्योधन की तुलना काम वासना से की गई है। अब देखिए, हमारे आचार्य जो हैं, उन्होंने इन राक्षसों को लिया और राक्षसों को अलग अलग प्रकार से हमारे हृदय के अनर्थों का प्रतीक बताकर शिक्षा दी है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने वृंदावन में भगवान ने जितने असुरों का वध किया, तो एक एक असुर हमारे हृदय के कौन से अनर्थ का प्रतीक है, ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रस्तुत किए हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं, जैसे बलदेव विद्याभूषण, यहां पर वो काम वासना की तुलना दुर्योधन से कर रहे हैं। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि काम वासना की तुलना रावण से की गई है और हिरण्यकशिपु उससे भी कई बार की गई है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे कैसे, कि अगर रावण काम वासना का प्रतीक है तो दुर्योधन कैसे हो सकता है। नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों हो सकते हैं। जैसे कि कोई भगवान के जो भक्त होते हैं वो साइमल्टेनियसली भगवान के बहुत प्रगत भक्त हो सकते हैं, वैसे राक्षस जो हैं वो साइमल्टेनियसली अलग अलग प्रकार के अनर्थ या एक ही अनर्थ के दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति या कई व्यक्ति प्रतीक हो सकते हैं। तो महाभारत में दुर्योधन ने किया क्या, दुर्योधन ने इन तीन व्यक्तियों को पकड़ा विशेष रूप से, दुशासन, धृतराष्ट्र और कर्ण। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि दुर्योधन जैसे कि काम वासना है, तो काम वासना दुर्योधन की तरह वो जानता है कि हमारे शरीर में किस पर कब्जा करना है और कब्जा कर कैसे भोग विलास उस व्यक्ति से स्वयं के लिए अर्जित करना। देखिए, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि कामवासना में और द्वेष में अंतर क्या है। द्वेष जो है वो भोग विलास के लिए कभी इच्छुक नहीं रहता, द्वेष जो है वो अगले के भोग विलास को रोकने के लिए इच्छुक रहता है। काम वासना को अगले के विषय में कोई ज्यादा बैर नहीं होता है. लस्ट इज नॉट लाइक डिमोनाइजिंग समवन एल्स. इट सिंपली वॉन्ट्स सेल्फिश इंटरेस्ट फॉर वन सेल्फ. एनवी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस ग्रेटिफिकेशन. दैट इज द प्लेजर ऑफ एनवी. तो दुर्योधन यहां पर वो स्वयं के लिए भोग विलास चाहता था, और क्योंकि पांडव बीच में आ रहे थे तो खत्म करना है पांडव. तो अब दुर्योधन अकेला तो नहीं कर पाता था, तो उसने देखा सबसे पहले मेरे जो बाकी 99 भाई हैं, बाकी 99 भाइयों में से एक ही है जो थोड़ा कुशल है युद्ध में, एक योद्धा के नाम पर उसको पास किया जा सकता है, वो है दुशासन. बाकी कोई काम के नहीं थे इतने, दुर्योधन के स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहे थे वो, कि ये लोग मेरी कुछ मदद कर पाएंगे. तो महाभारत में वर्णन है कि बाकी बहुत से जो थे वो दुर्योधन का विरोध भी किए थे. जो कारनामे दुर्योधन कर रहा था उसका विरोध बाकी भाई किए थे. दुशासन एक था जो एकदम हां में हां मिलाने वाला, यस बॉस टाइप. और धृतराष्ट्र, अब देखिए धृतराष्ट्र को अपने चंगुल में लेना ये सबसे महत्वपूर्ण था दुर्योधन के लिए, क्योंकि उस समय राजगद्दी पर धृतराष्ट्र विराजित थे. और दुर्योधन जानता था कि मेरे पिता अंधे जरूर हैं, परंतु उनको दिख रहा है कि धर्म कहां पर है और अधर्म कहां पर है. और मेरे जो पिता हैं वो फुसलाए जा सकते हैं किसी से भी, तो बहुत सावधानी से मुझे मेरे पिता को मेरी पार्टी में लाना है, मेरे क्लब का मेंबर बनाना. हालांकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, युद्ध वगैरह तो कोई लड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध से पहले जो भी प्रस्ताव मेरे को पारित कराने वो धृतराष्ट्र से ही कराने. तो दुर्योधन बेवकूफ नहीं था. और फिर कर्ण, कर्ण तो जैसे कि उसका वो क्या कहते हैं, हुकुम का इक्का होता ना ताश के अंदर, कर्ण तो दुर्योधन के लिए हुकुम का इक्का था. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अब हम लोग को लग रहा होगा हाँ दुर्योधन तो ऐसे ही था, धृतराष्ट्र दुशासन नहीं, अभी बलदेव विद्याभूषण दुर्योधन को हटाकर हमको लगा रहे हैं कि काम वासना जो कि दुर्योधन की तरह हमारे अंदर कैसे षड्यंत्र रचकर हमारा ही पतन कराने के लिए, जैसे दुर्योधन ने इन तीनों का सहारा लेकर अपने ही कुल का नाश कराया. तो अब दुशासन की तुलना इंद्रियों से की गई. बलदेव विद्याभूषण बहुत ही चतुराई से, बुद्धिमता से यहां पर दुशासन की तुलना वो इंद्रियों से कर रहे हैं, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे कि आज के श्लोक में बताया गया है कि जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, केवल जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है. जैसे कि पिछली बार हमने उदाहरण लिया था कि आप लोगों की इंद्रियां, आप जिस चेयर पर बैठे हो उससे श्रेष्ठ है. अब इंद्रियों को इसमें उनका सीना नहीं फूल जाना चाहिए क्या, जो मैं तो श्रेष्ठ हूं, अरे केवल वो कुर्सी से श्रेष्ठ हो बस. तो दुशासन दुर्योधन के लिए केवल कुछ हद तक काम का था. इसलिए हमारे अंदर जो कामवासना है वो हमारी इंद्रियों पर केवल निर्भर होकर अपना साम्राज्य नहीं स्थापित कर सकता. जैसे कि दुर्योधन केवल दुशासन की मदद से पांडवों को नहीं मार पा रहा था. इसलिए देखिए जब द्रौपदी वस्त्र हरण की बात हुई तो एक टीकाकार कहते हैं कि दुर्योधन उठकर क्यों नहीं गया, द्रौपदी को खींचकर लेकर आना उस असत सभा में और वो वस्त्र हरण करना, ये सब कुछ दुर्योधन ने क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्योधन को डर था, अंदर उसको डर था कि भीम के सामने ये कृत्य यदि मैं करूंगा, पहले से ही भीम और मेरा 36 का आंकड़ा है, अब ये 36 का आंकड़ा 64 का आंकड़ा बन जाएगा, तो यदि भीम के सामने मैंने ऐसा कुछ कृत्य किया तो पता नहीं वहीं पर भीम क्या कर दे मुझे। अब होता है ना, आप देखो आपका गुस्सा किसी और पर है, परंतु आपके सामने यदि कोई गाली गलौच कर रहा है, मान लो कि दो पड़ोसी हैं और जो दोनों के बीच में बैर है, तो झगड़ा चल रहा है लेकिन बीच में उसका लड़का आके बीच में कुछ टिंगल उड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आप पहले लड़के को दो थप्पड़ मारोगे ना? तो वैसे ही बैर बीच में भीम और दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, दुशासन को भेजा, तू जा भैया, कुछ गड़बड़ भी हुआ तो तू मार खाएगा। तो दुशासन जो था वो अव्वल दर्जे का मूर्ख था, दुशासन अव्वल दर्जे का मूर्ख, जैसे हमारी इंद्रियां केवल जड़ पदार्थ से थोड़ा ऊपर, वो ज्यादा उसके अंदर क्षमता नहीं है कि कुछ कर पाए, तो ऐसे दुशासन। इसलिए दुशासन ने जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का अटेम्प्ट किया तो भीम ने जो प्रण लिया, हालांकि करनी सब दुर्योधन और कर्ण की थी, दुशासन तो केवल प्यादा था, परंतु भीम ने प्रण क्या लिया, मैं इस दुशासन के खून को निकालकर पीऊंगा और द्रौपदी के बालों को उस खून से धोऊंगा। अब दुशासन ने जब यह सुना तब उसको समझ में आया, अरे बाप रे, परंतु दुशासन भी, अब महाभारत के युद्ध में मैं आपको ले जाता हूं 2 मिनट के लिए, कि जब युद्ध में भीम ने वो जो प्रण लिया था वो भूले नहीं थे, भीम दुशासन को ढूंढ रहे थे कि दुशासन मेरे सामने आ जाए, बाकी सारे योद्धाओं को मैं छुट्टी दे दूंगा इसके सामने। तो जब बाकी योद्धा युद्ध कर रहे थे, दुशासन सामने आया तो भीम ने बाकियों को छुट्टी दे दी कि तुमको अभी मैं छोड़ दूंगा फिलहाल, अभी तो पहले मैं इसका हिसाब चुकता करता हूं। तो दुशासन भीम ने पकड़ा और दुशासन की छाती पर भीम ने प्रहार किया और भीम ने दुशासन को पूछा चिल्लाते हुए, दुष्ट दुशासन बता कौन सा हाथ था, कौन सा हाथ था जिस हाथ ने द्रौपदी के वस्त्रों को छीना, कौन सा हाथ था बता। और दुशासन इतना मूर्ख कह रहा है ये वाला था। देखो भीम के नीचे, भीम उसके ऊपर चढ़े हुए, भीम जैसे व्यक्ति दुशासन पर चढ़े हुए उसको पूछ रहे, कम से कम उधर तो दोनों हाथ जोड़ के बोल देता मेरे से गलती हो गई, अभी तो छोड़। वो भी देखो उसका अहंकार, मूर्ख लोगों का ऐसा ही अहंकार होता है, बता रहा है ये वाला था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुशासन जो कि अव्वल दर्जे का मूर्ख था, हमारी इंद्रियां भी उस प्रकार से है। तो काम वासना केवल हमारी इंद्रियों पर कब्जा कर हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर दुशासन की तुलना इंद्रियों से की गई, धृतराष्ट्र की तुलना मन से की गई है। अब देखिए मन जो है, ऐसा नहीं कि हर समय मन हमारा शत्रु बना रहता है, हां बहुत बार शत्रु रहता है, बहुत बार मित्र बन जाता है। तो धृतराष्ट्र के तरह मन है, धृतराष्ट्र उसे एहसास हो रहा था कि दुर्योधन मेरा ये पुत्र जो कर रहा है, और भीष्म पितामह विदुर ये सब कहते थे धृतराष्ट्र को, ये सब कहते थे धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र ये तेरा जो दुर्योधन है ये पूरे कुरु वंश का नाश कराएगा, ये न केवल स्वयं का न केवल आपका, ये पूरे कुरु वंश का नाश कराने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो गधे ढेंचू ढेंचू कर रहे थे, ये वर्णन है महाभारत में। ये ऐसे तो सितारों के साथ पैदा हुआ था, ये थी इसकी कुंडली। तो धृतराष्ट्र वो बहुत बार जाकर वो दुर्योधन को समझाने की कोशिश करता, बेटे इतना नीचे मत गिर, मैं जानता हूं तू गिरा हुआ है, इतना नीचे मत गिर। और दुर्योधन जैसे जैसे भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो भगवान ने धृतराष्ट्र इन सबको पहले समझाया, पहले धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो भगवान कहे कि ये तो बात करने लायक ही नहीं है दुर्योधन, तो धृतराष्ट्र को समझा कि देखो धृतराष्ट्र मैं उनकी ओर से आया हूं, पांडवों की ओर से आया हूं, मैं केवल 5 गांव मांग रहा हूं, गांव शहर भी नहीं मांग रहा, हस्तिनापुर भी नहीं मांग रहा, शहर भी 5 गांव दे दो उनको, इतनी तो इज्जत रखो उनकी। तो धृतराष्ट्र मान गया, धृतराष्ट्र जाके दुर्योधन को समझाने की कोशिश करता है कि बेटे 5 गांव दे। दुर्योधन आप अगर मुझे सुई के नोक जितना भी स्थान उनको देने के लिए कहेंगे तो यहीं पर मैं अपना प्राण त्यागने वाला हूं। तो वो जानता था, अब ये बात अगर वो भगवान कृष्ण को कहता तो भगवान कहते ठीक है त्याग दे यार, मेरे को क्या मतलब है तेरे प्राण का, मुझे कोई लेना देना नहीं तेरे प्राण का, त्याग दे कर ले आत्महत्या। तो ये बात वो केवल धृतराष्ट्र को, ये धमकी हर समय दुर्योधन धृतराष्ट्र को ही देता और गांधारी को देता। और जब भी धृतराष्ट्र और गांधारी ये धमकी सुनते दुर्योधन की, अरे बेटा आत्महत्या बिल्कुल नहीं, जो चाहिए ले, चॉकलेट चाहिए आइसक्रीम चाहिए जो चाहिए ले खा। तो धृतराष्ट्र ये हमारे मन की तरह कि जैसे ही काम वासना हमारे मन को धमकी देता है, मन अगर काम वासना को बोलने का भी प्रयास करे ये ठीक नहीं, ये पाप है, पाप, जो इंद्रिय भोग जो संतुष्टि जो राजगद्दी तुमको दी गई है वो मैं छीन लूंगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, खाने के लाले हो जाएंगे, तो फिर नहीं क्या चाहिए ऐसे, ये हमारा मन। और फिर भीष्म और विदुर के साथ फिर से सोचने लगता है कि हाँ सही युधिष्ठिर ही है। तो अब ये है हमारा मन धृतराष्ट्र की तरह कि कहीं कोने में मन जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, जैसे धृतराष्ट्र जानता था। अब आप जान गए होंगे कि कर्ण की तुलना बुद्धि से की गई, क्यों कर्ण की तुलना बुद्धि से की गई है, क्योंकि दुर्योधन जानता था न तो मेरे पिता धृतराष्ट्र न ये मेरा मूर्ख दुशासन मुझे युद्ध जिताएगा, यदि मुझे कोई युद्ध जिताएगा तो वो है कर्ण। तो यहां कर्ण जो है तर्तम्य न्याय के अनुसार सबसे शक्तिशाली बताया गया, काम वासना के 3 निवास स्थानों में से जो सबसे शक्तिशाली निवास स्थान, मतलब जहां जिसने हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया काम वासना, वो है इंटेलिजेंस। और कर्ण की तुलना बुद्धि से इसलिए की गई है क्योंकि बुद्धि जो है जब वो भगवान जो 10वें अध्याय में कहे हैं कि जब बुद्धि मुझ में लगती है तो मैं दिव्य बुद्धि उसे देता हूं सही राह पर चलने के लिए। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते। तो कर्ण को भी भगवान आकर कहे थे युद्ध से पहले कि कर्ण तुम ज्येष्ठ, सबसे ज्येष्ठ पांडव तुम हो, तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो सकता है यदि तुम पांडवों की ओर से लड़ो। तो कर्ण वो बुद्धि जो कि सुबुद्धि के पथ पर न चलकर कुबुद्धि के पथ पर चल गए, और इसलिए फिर जो भी कुछ कर्ण के साथ हुआ वो उसी वजह से हुआ, केवल दुर्योधन का संग, काम वासना का संग। तो बुद्धि जब काम वासना के अधीन होकर उसके एहसान तले, कर्ण क्या था, दुर्योधन के एहसान तले दबा हुआ था। तो काम वासना भी इसी प्रकार से, पहले जैसे कर्ण को अंग का राज्य दे दिया, वैसे काम वासना बुद्धि को कुछ थोड़ा बहुत देती रहती है, और फिर अपने वशीभूत कर, क्योंकि फिर बुद्धि वो मन और इंद्रिय इनको अपने वश में लाती है। तो इसलिए दुर्योधन की तुलना यहां पर काम वासना से की गई। श्रीमद् भागवत में हमारे मन को, क्योंकि यहां पर भगवान का मेन फोकस मन के ऊपर है, तो हम उसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में मन, अनियंत्रित मन की तुलना एक वैश्या से की, और यह श्लोक इसका बहुत सुंदर है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तम अनुरेरया योगिनः कृत मैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। पुंश्चली का अर्थ है वैश्या। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, an unchaste woman is very easily carried away by paramours. Paramours का अर्थ है पति के अलावा, क्या कहेंगे उसको, प्रेमी जो भी। And it sometimes happens that her husband is violently killed by her paramours. If the yogi gives his mind a chance and does not restrain it, his mind will give facility to enemies like lust, anger and greed, and they will doubtlessly kill the yogi. तो काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री यदि काम वासना के वशीभूत हो जाए तो वो अपने पति को मरवा सकती है। यहां लिखा हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है भागवत, अपने पति को मरवा सकती। और मैंने व्यक्तिगत रूप से ये एक घटना एयरफोर्स में देखी कि ऐसी ही एक पत्नी, एक मां जिसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसने अपने बेटे की हत्या करवा दी। स्वयं के बेटे, उसके बेटे को पता लग गया तो जो पैरामोर था जिसके साथ उसका वो नाजायज संबंध चल रहा था, उसके द्वारा अपने बेटे और ऐसे नृशंस तरीके से हत्या करवाई, उसके उसकी बोटी बोटी काट कटवा दी। एक मां, तो यहां पर जब पहली दफा मैंने ये श्लोक पढ़ा था तो मुझे लगा बहुत स्ट्रांग श्लोक है भाई, ऐसे कैसे हो सकता। तो ये श्लोक में बेटे के बारे में तो लिखा ही नहीं गया है, पति के बारे में लिखा है। तो हो सकता है क्योंकि ये श्लोक द्वापर युग में कहा गया था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कोई अंदाजा नहीं था कि कलयुग में इस हद तक भी कोई घिनौना कर्म कर सकता है। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हुआ था। तो यहां पर अनकंट्रोल्ड माइंड, अनियंत्रित मन की तुलना इस वैश्या पुंश्चली से की, कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, आज एक कस्टमर, कल दूसरा कस्टमर, परसों तीसरा कस्टमर, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. तो अनियंत्रित मन ऐसे ही हमारे अंदर कार्य करता रहता है. तो मन क्या है? वो वैश्या है और पूरे शरीर को वैश्या घर बना लेता है. और ये कस्टमर कौन है फिर इस श्लोक के अनुसार? ये इंद्रियां. ये इंद्रियों को लगाता है यहां वहां, तो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से भोग करता हुआ. और फिर वो जो हस्बैंड है उसकी तुलना किससे की गई है? हमारी आत्मा से. कि हमारे इंद्रियों को लेकर ये वैश्या रूपी अनियंत्रित मन हमारे आत्मा का हनन करवाता है. अब एक और उदाहरण दिया गया है. हमारे अनियंत्रित मन की तुलना एक खूंखार जानवर से की गई. आज ही हम सुबह ड्रेसिंग करते समय राधानाथ महाराज का एक प्रवचन सुन रहे थे, जिसमें महाराज ये उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत से. जैसे कोई सर्कस का रिंग मास्टर है, वो सर्कस में ऐसे खूंखार जानवर को टेम करने के लिए उसको कार्यरत रखा है, तो यदि वो सावधान न रहे तो यही जानवर उसको खा सकता है. इफ उदाहरण है एक शिकारी का, इफ द हंटर इज नॉट केयरफुल देन द एनिमल विच द हंटर हैज कॉट, द हंटर माइट गेट किल्ड बाय दैट सेम एनिमल. तो शिकारी, जिसने शिकार पकड़ा है, शिकारी उस शिकार का शिकार बन सकता है. अब आपको समझ में आया? शिकारी अपने ही शिकार का शिकार बन सकता है यदि सावधान न रहे तो. और राधानाथ महाराज आज के प्रवचन में कह रहे थे कि अमेरिका में ऐसी घटना हुई, लास वेगस में एक व्यक्ति ऐसे ही शो दिखा रहा था, शेर को कैसे उसने टेम कर रखा है, और सबके सामने वो दिखा रहा था कि कैसे वो शेर के जबड़े में हाथ डाल रहा है, यहां कर रहा है, वो खेल रहा है, उसको है ना मार रहा है सर के ऊपर ऐसे. बोलो शेर के साथ ऐसे कर, तो थोड़ा ज्यादा ही कर रहा था. शेर ने भी देख लिया, भैया तू ज्यादा ही अपने चादर से बाहर पैर फैला रहा है. तो सबके सामने वो शेर ने उसके ऊपर प्रहार किया और तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में भर्ती हो गया वो. यदि सही समय पर नहीं पहुंचता तो उसका शो हो जाता खत्म, उसका खुद का लाइफ शो खत्म हो जाता. तो महाराज जी उदाहरण दे रहे थे कि हमारा अनियंत्रित मन इस खूंखार जानवर के समान है. हम इसको टेम करने की कोशिश करते हैं, यदि सावधानी से इसको टेम न किया जाए तो ये हमें ही पिंजड़े में डालकर शिकार बना देता है. और ये हो रहा है कलयुग में 90% आप देखो कि स्वयं के मन का ही शिकार बने हुए लोग घूम रहे हैं अपने ही पिंजड़े के अंदर. अगला उदाहरण, हमारा अनियंत्रित मन लालटेन की लौ के समान है. अब लालटेन की जो लौ है उसकी एक बाती होती है, नीचे घासलेट होता है. तो यदि मैं आपको पूछूं कि वो जो लालटेन की लौ है, आप जब जलाए होंगे, आजकल तो लालटेन को यूज नहीं करता परंतु फिर भी आपको अनुभव होगा, लालटेन को जब आप जलाते हो तो तुरंत लालटेन की लौ कैसे दिखती है? डांस करती है ना. तो लालटेन की लौ उसको कहते हैं द फ्लिकरिंग फ्लेम, द वेवरिंग फ्लेम. तो हमारा मन उस प्रकार से. तो अब आपको यदि वो लालटेन की लौ को स्थिर करना है तो कैसे करोगे? कांच, बस कांच से हो जाएगा। उसका एक नॉब होता है, नॉब, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। एक लीवर होता है उसका, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप उसको कंट्रोल न करो तो वो जो लॉ यहां वहां नाच रही है वो पूरे कांच को काला कर देती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सूट, जो कालिक है, कालिक, उससे वो पूरे कांच को, और वो कांच इतना काला हो सकता है यदि उसको तुरंत आपने कंट्रोल नहीं किया, वो कांच इतना काला हो सकता है कि वो लॉ भी दिखाई नहीं देगी। अब देखिए वो जो लालटेन की लॉ है उसका प्रयोजन क्या है, कि अंधेरी जगह को प्रकाशमान करना। यदि उसको कंट्रोल ना किया जाए तो अंधेरी जगह प्रकाशमान होना तो दूर, वो लॉ भी दिखाई नहीं देगी उस सूट के वजह से। तो ये है अनियंत्रित मन की शक्ति। और वो जो नॉब है उसकी तुलना बुद्धि से की गई, कि बुद्धि को हमें सही तरीके से प्लग इन करना है, सही तरीके से सही राह पर रखना है, ताकि वो उस बाती जिस पर वो लॉ जल रही है उसको कंट्रोल में रखे। और हां, यदि वो कंट्रोल में आए तो लालटेन को फिर आप, जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि वो एक अंधेरे स्थान को प्रकाशमान कर सकता। तो ये उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत में लालटेन की लॉ का, हमारे अनियंत्रित मन से। अब आठ कारण हमारे मन के अंदर जो इतना विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, इसके आठ कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण कि पहले से ही इतने जन्मों से हमारे मन के अंदर इतने इंद्रिय भोग, इतने विषय, इन सब के इंप्रेशंस हैं। तो यदि हमारे सामने कोई इंद्रिय भोग अभी मौजूद न भी रहे तो मन कहता है मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरे पास खुद का स्टॉक है, पिछले इतने जन्मों से मैंने जो स्टॉक बैलेंस करके रखा है वो सब एक एक कर वो बाहर निकालता रहता है। इसलिए बहुत बार जब हम अध्यात्म के पथ पर लगते हैं, जैसे इस्कॉन में हम आए और हमको माला दी गई, चलो माला जप, भगवान का जप शुरू करो, तो जब हम जप शुरू करते हैं तब समझ में आता, अरे बाप रे, ये सब चीजें तो मैंने कभी सोची भी नहीं जिंदगी में, ऐसी ऐसी भयानक चीजें हमारे ख्याल में आती रहती हैं जो हमने पहले कभी सपने में भी वो सारी चीजें सोची नहीं होंगी। तो मन क्या करता है, ये सब मन के खेल हैं। मन क्या करता है कि जब हमने माला लेकर बैठे हैं जप करने के लिए तो सामने तो कोई इंद्रिय भोग की वस्तु है नहीं, मन जानता है अभी तो केवल ये माला झोली है, जहां पर भी देखो ये भक्त बैठे हुए तिलकधारी और ये भगवान के चित्र इत्यादि, तो मेरा तो यहां पर कोई दाना पानी मिलने नहीं वाला है, हाँ मुझे तो यहां पर कुछ मिलने नहीं वाला है, ये तो दो घंटा अभी बस केवल हरे कृष्णा करेगा, तो मेरे लिए तो एकादशी हो गई, वो भी निर्जला। तो मन फिर कहता है कि ठीक है, जैसे होते हैं ना कई जानवर होते हैं, ऊंट, ऊंट, ऊंट को आपने देखा होगा, उसको हर समय बाहर से कोई खाने की वस्तु उपलब्ध कराकर देने की जरूरत नहीं है, वो एक बार खा लेता है, बार बार उसको चबाए हुए को बाहर निकालकर वापस चबा कर वापस अंदर डालता है, देखा आपने, उसके गले से दिखता भी रहता है, अंदर से गया वापस फिर वहां पे चबा के अंदर डालता है फिर वापस, ऐसे ये मन भी ऐसा ही है। मन कहता है ठीक है तू बाहर से मेरे को खाने को नहीं देता ना, मैं अंदर से निकालता हूं, पिछले जन्म में जो तूने मेरे को खिलाया था ना उसको निकाल के तेरे को दिखाऊंगा, उसके पिछले जन्म में जो तूने मेरे को खिलाया था ना उसको निकाल के, 50वें जन्म पहले जो तूने खाया था ना 50,000 जन्म पहले जो तूने खाया था ना, 50,00,000 जन्म पहले जो तूने खाया मेरे को खिलाया था ना, वो मैं ले खा देख। आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आप अचानक छिपकली की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। तो ये है सबसे पहला कारण, पास्ट डॉर्मेंट इम्प्योर डिजायर्स। अच्छा इतना ही नहीं, केवल अब नई नई इच्छाएं, उतना ही केवल नहीं था, पहले से गोदाम भरा हुआ है, उधर हाउसफुल चल रहा है। अब माया देवी कलयुग के कोलैबोरेशन में, क्या कोलैबोरेशन है देखो, माया देवी और कलयुग के कोलैबोरेशन में नए नए हमारे भौतिक इच्छाएं और उसके अंदर डालने की कोशिश। जैसे वो बॉम्बे के लोकल ट्रेन है, इतना खचाखच ट्रेन का बोगी भरा हुआ है, फिर भी अंदर घुस रहे हैं, उनको फिर भी जगह मिल रही है। वैसे ही हमारा मन पहले से खचाखच इंद्रिय भोग की इच्छाएं भरी हुई है और नई नई इच्छाएं। अच्छा सेलफोन, पहले कभी इच्छा ही नहीं की थी सेलफोन, ये इच्छा था ही नहीं, पूरे लिस्ट में नहीं था, गोदाम में नहीं था, अब ये ले। अच्छा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार प्रकार के सेलफोन उनकी इच्छाएं, फिर ये वो अलग अलग प्रकार के नए नए विषय वस्तु के द्वारा अब नई इच्छाओं से मन विक्षेपित होता। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण कि जो ये दोनों कनेक्टेड हैं, कि जो विषय वस्तु एक एक कर आ रही है, तो हमारा मन करता क्या है कि जरूरी नहीं कि जितनी विषय वस्तु माया देवी प्रस्तुत कर रही है, हमारा मन हर एक विषय वस्तु से आकर्षित होगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मन क्या करता है कि जो विषय वस्तु के साथ उसका कनेक्शन स्थापित होता है, उस विषय वस्तु के द्वारा एक नई इच्छा उसकी एंट्री करता है। अब देखिए कि कोई छोटा सा बालक है, उसके अंदर भी सुप्त रूप में सारी भौतिक इच्छाएं हैं। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद को एक छोटे से बालक को दिखाकर पूछे कि कितना शुद्ध है ये बालक। प्रभुपाद ने कहा जस्ट वेट अंटिल द चाइल्ड ग्रोज। राइट नाउ इट्स नॉट दैट द चाइल्ड इज प्योर, इट्स जस्ट दैट द मटेरियल डिजायर्स आर नॉट मैनिफेस्ट। वो है, कचरा अंदर ही है, अभी तक झाड़ू मारना शुरू नहीं किया, वो बाहर दिख नहीं रहा है, वो कचरा वो आएगा धीरे धीरे। तो एक छोटा बच्चा, उसके सामने आप अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग की वस्तुएं रखो, नोट की गड्डियां, किताबें, खिलौने, खाने की वस्तुएं, ये सब, तो उसका जो मन है वो कौन सी इंद्रिय वस्तु से उसका पिछला एंजॉयमेंट को कनेक्ट करता है। अभी उसके सामने सेलफोन रखो, उसको कुछ आकर्षण उससे नहीं होगा कि यार दिखने में भी क्या है, इतना सा काला सा क्या पता है। उसके सामने फुग्गा रखो 2 रुपए का और एक सेलफोन रखो 50,000 का, वो फुग्गे के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा, दो उसको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये 50,000 का, ये दो बड़ा होने के बाद अरे फुग्गे को साइड में करो, वो लाओ, क्योंकि फिर उसका मन उस नए इंद्रिय भोग की वस्तु से जैसे कनेक्शन स्थापित करता है वैसे वो विक्षेपित होता है। ये तीसरा कारण। अब देखिए कोई सोए नहीं तो हम लोग को लगता होगा ठीक है दिन भर तो इसने मेरे को यहां वहां भगाया, ये देख, ये सुन, ये खा, ये स्पर्श कर, आवा भाग रहा हूं मैं पागलों की तरह, अब रात के समय तो मेरे को शांति से सोने दे, तू भी सो जा मैं भी सोता हूं। मन कहता है तू सो जा मैं तो नहीं सोऊंगा। तो मन दिन भर तो भागता फिरता है, हमको भी भगाता है, और रात को जब शरीर लंबा लेटा हुआ है मन अंदर शुरू करता है उसके कार्यक्रम फिर शुरू करता है सपनों के रूप में, कि जो दिन में वो शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त कर सका अब सपनों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो कि किसी के पैसे बाकी हैं, आपने किसी को कर्ज दिया और वो पैसे उसने दिए नहीं, दिन भर आप भाग रहे हो पैसे लेने के लिए, नहीं दिया, नहीं मिले, रात को आप सो गए तो मन रात को कहता है मैं दिलाता हूं तेरे को, फालतू में भाग रहा था मैं दिलाता हूं, आप सोए हुए सपने में वो आके आपको सोने की थाली में आपके 1,00,000 रुपए पूरे ब्याज के साथ, और आपको इतना अच्छा लगा वाह ब्याज के साथ, और पेड़ा भी उसके साथ दिवाली का फराल सब कुछ दे रहा हूं। तो मन ये है कि जो दिन में आप हासिल नहीं कर सके वो सपनों के रूप में आपको ऐसे झांसे में डालता है, फिर सुबह उठे अरे बाप रे, कोई सोने की थाली नहीं, कोई दिवाली का फराल नहीं, कोई ब्याज नहीं, मुद्गल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लगो फिर से दिन भर भागते हुए। ये है मन। तो इसलिए जो सपनों में भी हमको यहां वहां भ्रम में डालता फिरता है, जागते हुए तो फिरता ही है सपनों में भी, माइंड नेवर स्लीप्स, ये कुत्तों की तरह है, यहां की वृंदावन कॉलोनी के जो कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं आजकल, ये कुत्तों की तरह है। ये आप देखो, ये दिखते हैं सोते हुए, कभी देखा कुत्ते की नींद बोलते ना, क्यों बोलते कुत्ते की नींद, ऐसे देखा लंबा लेटा हुआ है अब थोड़ा सा यहां उठ के तुरंत आपको ऐसे देखा और भौंकना शुरू करेगा। कई बार हम सुबह मंगल आरती में आते हैं देखते हैं कि ये लोग एकदम ऐसे सोए हुए हैं जैसे पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खाई होंगी इन्होंने, लेकिन जैसी थोड़ी सी आहट होती है सब खड़े होके देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये भी अभी आने वाले मंगल आरती में, सब खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन आ गया दो पैर वाला, वो तो चार पैर वाला, ये दो पैर वाला कौन सा आ गया। तो वो कुत्ते हैं, वो उन पर कभी विश्वास मत करना कि वो सोएंगे, वैसे ये मन है दिखाता है लंबा सोया हुआ है, मैं सोया हूं तू भी सो जा, हम सोने की कोशिश करते तो भौंकना शुरू करता है, फिर वो सपने के रूप में भौंकना शुरू करता है। अगला कारण एक्सपेंसिव नेचर, कि ये जो मन है जब भी किसी विषय वस्तु या एक भौतिक इच्छा के संपर्क में आता है, या इच्छा मन के संपर्क में, हाँ अगर इस प्रकार से हम समझे कि एक भौतिक इच्छा मन के संपर्क में आते मन उसको विस्तारित कर देता है। तो नीति में श्लोक है इसके संदर्भ में, चार उदाहरण दिए गए हैं इस श्लोक के द्वारा कि कैसे मन, इन चार उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे मन एक भौतिक इच्छा को विस्तारित करता है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयमेव विस्तार वस्तु शक्तितः, विस्तार वस्तु कि इन वस्तुओं का विस्तार हो जाता है। कौन कौन सी वस्तुओं का विस्तार हो जाता है? सबसे पहला उदाहरण है जले तैलम, जल के अंदर एक आप भगोने में जल लीजिए और उसमें एक बूंद तेल, जले तैलम एक बूंद तेल डाल दीजिए, पूरा भगोने का जो पानी है वो तेल तेल वाला दिखेगा। तो पहला उदाहरण है कि जल तेल के एक बूंद के संपर्क में आकर विस्तारित दिखता है। दूसरा उदाहरण है खले गुह्यम, अगर कोई गुह्य सीक्रेट बात है और आपको उसको विस्तार करना है, उसका सीक्रेट बात का विस्तार करना मतलब सबको पता लग जाना चाहिए, तो एक खल को जाके बता दो, क्रुकेड आदमी उसको जाके बता, तेरे को पता है मैं तेरे को सीक्रेट बता रहा हूं इसको बोलना मत, और वो व्यक्ति पूरा बीबीसी बन जाता है, बीबीसी, सीएनएन, इंडिया टीवी, जो भी कुछ वो बन जाता। तो खले गुह्यम, गुह्य बात को विस्तारित करना है, खल को बता दो। तीसरा उदाहरण दिया गया है पात्रे दानम, अगर आप दान दे रहे हो उसको आपको विस्तारित करना है उस दान को, तो एक पात्र व्यक्ति को दान दो, योग्य व्यक्ति को दान दो, तो आपका दान विस्तारित होगा। शास्त्रे ज्ञानम, यदि शास्त्र का ज्ञान किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जुड़ जाता है तो वो विस्तारित होता है। और फिर कहा गया है इसी प्रकार हमारा जो मन है, मन के संपर्क में एक इच्छा आती है, मन जो है उसको विस्तारित कर देता है, ऐसा विस्तारित करता है कि हमको लेने के देने पड़ते हैं। फिर जैसे हमने ये उदाहरण पहले भी दिया था, मन कहता है, मन के अंदर एक इच्छा हुई कि मुझे दिवाली आ रही है, मुझे नए कपड़े पहनने, दिवाली है साल में एक बार, मन कहता है दिवाली, दिवाली के अवसर पर तू साधारण कपड़े खरीदेगा, सबसे महंगे वाले, चल बाहर निकल, सबसे महंगे वाले कपड़े दिवाली साल में एक बार खरीदना है तो सबसे महंगे वाले। तो अब देखो कपड़े क्यों पहनता है व्यक्ति, अपने शरीर को ढकने के लिए साधारणतः, आजकल पता नहीं दूसरा। तो अब वो कपड़े खरीदने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे कपड़े खरीद, उसका प्राइस टैग दिखाना चाहिए कम से कम 4 नंबर से तो शुरू होना चाहिए, उसका 4 फिगर्स से शुरू होना चाहिए ऐसे कपड़े। फिर ये वो उसके अंदर एडिशंस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और फिर फाइनली आप देखते हो कि खाली एक तन को ढकने के लिए मैंने पूरी जेब खाली कर दी। अब जेब में डालूंगा क्या, जेब तो है इतनी सारी उस शर्ट में, डालूंगा कुछ है ही नहीं डालने के। तो ये सब कराया किसने, मन ने, एक्सपेंसिव नेचर ऑफ द माइंड। छठा कारण, संकल्प विकल्प। अब मन देखो वो ऐसा है, जैसे कई बार छोटे बच्चे होते ना, रोते रोते मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बंदूक चाहिए, मुझे ये इंजन की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप जाके उसको लाके दो, नहीं लेट हो गया, मुझे अभी और कुछ चाहिए। मन वैसा ही है, कोई एक विषय वस्तु के पीछे इतना चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, ये खाना, ये देखना, वो देखना, आप कैसे तो जतन कर कर वो लेकर आओ, उसके बाद में मन कहता मूड नहीं है, अभी दूसरा कुछ चाहिए। एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग, वही चीज एक क्षण पहले इतना लालायित होता है, वही वस्तु दूसरे क्षण रिजेक्ट। तो भाई ऐसे व्यक्ति, मानो कि आप किसी होटल के वेटर हो, मानो मानो, तो आपने ऑर्डर लिया कस्टमर का, कस्टमर कहता है मेरे लिए एक पाव भाजी, आप पूरा अंदर जाकर, वो कहता है मक्खन मार के, चीज मार के, ये वो सब मार के लेके आना, वो आप सब मार मूर के लेके आते हो, उसके ऊपर मारते हो, फिर तो लाकर आपने उसके सामने रखा, नहीं 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 मूड नहीं, मूड चला गया, दूसरा कुछ, तो मूड चला गया मतलब, नहीं भाई मूड नहीं है, दूसरा अभी थाली लेके आओ। तो वो बेचारा वापस जा, वो लेके जाता है, फिर थाली वाली लेके आता है, पूरा थाली वाली लेके आया, क्या था मूड नहीं, वापस नींबू पानी लेके, बस खाली उतना ही पीना है। तो सोचो आपके मन में फिर क्या चलेगा कि ना साला आया क्यों, फिर घर पे बैठता। तो कई बार हमारी भी हालत ऐसी हो जाती, मन हमको बार बार इधर जा उधर जा, ये देख, यहां पर मुंह मार, इधर कर, ये कर, वो कर, उसके बाद में फिर मन कुछ भी मूड नहीं है, आज मेरे को खाली जप करना है। अच्छा खाली जप करना है तो बाहर क्यों लेके आए, चलो मंदिर चलो, आज मंदिर आने के बाद बोर हो रहे हैं, क्या मन के बाहर मेरे बारे में बोल रहा है, चल बाहर चल, थोड़ा दिवाली का मौसम है, पटाखे चलाते। तो ये संकल्प विकल्प हमारे मन का, और कलयुग में विशेष रूप से अगर मन चाहे भी कि सही राह पर मुझे चलना चाहिए तो संग नहीं मिल रहा है कहीं पे। जहां पर जाओ लोग, समाज, परिवार इस मन को बोल रहे हैं गलत राह पर चलने के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं एक भक्त को जानता हूं बहुत वर्ष पहले जब बंबई में, वो भक्ति में, अब देखिए वो जब विद्यार्थी थे तब भक्ति में आए तो उनके पिताजी को पता लगा कि ये हरे कृष्णा मंदिर में जा रहा है, ये चार नियम पालन कर रहा है, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, हाथ में माला झोली ले लिया, तिलक लगाता है, कंठी माला, धोती पहन रहा है, स्टूडेंट, बंबई का स्टूडेंट धोती पहन रहा है। तो ये इसके पिताजी इसको पैसे देते थे, जा तू तू ना दारू पी किया, तू जा सिगरेट पी किया, तू जा वो पब में जा, वो नाइट क्लब में जा, तू यहां जा, वहां जा, ये मैं तेरे को पैसे देता हूं एक्स्ट्रा ले। तो ये तो संघ है आजकल का, कि अगर कोई सही संघ करने के लिए भी जाए तो ये मन और माया देवी सब मिलकर ऐसे ऐसे असत संघ प्रस्तुत करते हैं सामने कि मंदिर के रास्ते में आपको देखो इतने सारे प्रलोभन आएंगे, ये सिनेमा घर, ये बिग बाजार, ये सिटी सेंटर मॉल, ये सब बीच बीच में आए, सब कहा जा रहा है, इधर आ, मंदिर जा रहा है, खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी इधर आ, इधर देख क्या बन रहा है इधर, वो खिचड़ी भी वहां पर पका पका के, पहले वो लेक्चर वाला देता है ना, पका के फिर खिलाएगा खिचड़ी, और वो भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में इतनी सी मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि भी नहीं, बाकी लोग पहले चपेट जाते हैं। तो ये बीच में इतने सारे प्रलोभन आते हैं। तो ये संग है। और फाइनली एकमात्र अगर आशा थी इस मन को नियंत्रण में लाने की, बुद्धि, उस बुद्धि को भी सलाइन पे चढ़ा रखा है एकदम मरियल, बुद्धि भी मरियल पूरी, लेकिन है थोड़ी उसके अंदर शक्ति है, लेकिन वो थोड़ी सी शक्ति भी उसके अंदर ही वो इस्तेमाल मन कर लेता है। जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है तो एक दंपति, जो पति उसमें बहुत शराब पिया करता था, तो पत्नी ने कहा दिवाली का त्योहार आ रहा है, शराब छूना नहीं, और घर में इतनी सारी बोतलें भर रखी थी, सब जॉनी वॉकर, ये वॉकर, विस्की, रम, सब प्रकार। तो पत्नी रोज चेक करती थी, सारी बोतलें वैसी की वैसी है ना, रोज चेक करती थी वो पत्नी, तो रोज वैसी की वैसी बोतलें रखी रहती थी। अब दिवाली का त्योहार पास आ रहा था तो अचानक उसने एक दिन देखा पत्नी ने एक बोतल गायब, तुरंत पति को पकड़ लिया, तुमने वादा किया था दिवाली का त्योहार आ रहा है तुम नहीं पियोगे, बोतल कहां गई? तो देखो उसने बुद्धि लगाई, इसको कहते हैं वीक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है लेकिन वीक है। तो उसने पत्नी से कहा कि अब देखो दिवाली का त्योहार आ रहा है, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, तो मैंने पूरे घर में ढूंढा कहीं खाली बोतल दिखी नहीं, बच्चों के लिए, मैं जो भी करता हूं बच्चों के लिए करता हूं, बेचारों को रॉकेट छोड़ने के लिए बोतल चाहिए थी, अब मेरा क्या कसूर इसमें, पूछो बच्चों से पूछो। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा हूं दिवाली पर रॉकेट छोड़ने के लिए आप बोतलें खाली करते रहो। तो बुद्धि लगाई लेकिन गलत जगह पर, इसको कहते हैं वीक इंटेलिजेंस। तो ये आठ कारण हमारे डिस्ट्रैक्टिव माइंड के। तो अर्जुन ने अब मन के विषय में जो प्रसिद्ध श्लोक, इसको लिए बिना माइंड के ऊपर सेमिनार पूरा हो ही नहीं सकता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। तो इस श्लोक में अर्जुन ने इस मन को चंचल कहा है, इस मन को प्रमाथि अर्थात पागल कहा है। अर्जुन ने श्लोक में मन को बलवान कहा है और हटी दृढ़म कहा है कि मेरा मन चंचल है, पागलों की तरह चंचल है, बलवान पागल की तरह चंचल है, हटी बलवान पागल की तरह चंचल। कहीं पर कोई आशा नहीं छोड़ी है। और इसके ऊपर अर्जुन ने कह दिया भगवान से कि भगवान अगर आप मुझे एक तूफान को वश में करने के लिए कहोगे तो उसको मैं वश में कर लूंगा, परंतु इस चंचल प्रमाथी बलवान दृढ़ मन को मैं नहीं कर सकता। और ये कौन बोल रहे हैं? ये कोई ये देशी दारू में बैठने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है ठर्रा पीते हुए, ताड़ी माड़ी केंद्र में बैठा हुआ कोई नहीं बोल रहा है। अर्जुन, अर्जुन जैसे संयमी व्यक्ति, वो अर्जुन बोल रहा है। अब देखिए अर्जुन का संयम मन के ऊपर, हम लोग मन का डिस्ट्रैक्शन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। द्रौपदी स्वयंवर के समय ऐसे नहीं अर्जुन ने जाकर, फिल्मों में दिखाते हैं अच्छा अच्छा ठीक है द्रौपदी चलो शादी करते हैं। नहीं, अर्जुन के सामने क्या रखा था कि वो मछली की आंख को भेदना है। जो परीक्षा का पेपर अर्जुन के सामने रखा था, मछली की आंख को भेदना है, और वो भी घूमती हुई मछली, और उस घूमती हुई मछली के प्रतिबिंब को देखकर ऊपर उसकी आंख को भेदना है। तो महाभारत में वर्णन है कि ये ट्रेनिंग द्रोणाचार्य ने भी नहीं दी थी अर्जुन को, इतनी कठिन परीक्षा द्रोणाचार्य ने भी नहीं दी थी। तब देखिए वहां पर ऐसी ऐसी कसौटी पर रखा अर्जुन को, और ऐसी ट्रेनिंग भी उस प्रकार कभी पहले कभी नहीं किया अर्जुन ने, उस प्रकार का निशाना कभी नहीं बांधा। तो वहां पर जब कहा गया तो अर्जुन को इतना विश्वास था अपने मन के ऊपर। यहां पर फोकस माइंड कितना चाहिए, हम तो कई बार माला करते करते माला ही छूट जाती, किधर गए, वो ढूंढते रहते पूरे माला झोली के अंदर कौन सा वाला बीड़ था। एक बार याद है हमारे बंबई में गुरुकुल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग सुबह उनके एक दो माला करने के लिए मंदिर में आते मॉर्निंग प्रोग्राम में, फिर चले जाते थे। तो एक बार हमारे वो राधा गोपीनाथ प्रभु जो उनके इंचार्ज थे, तो वो सर्कल में बैठे सब गुरुकुल के बच्चे, तो एक बच्चा एकदम पूरा गर्दन हिलाते हुए, नाड़ यहां वहां हिलाते हुए, हरे कृष्ण एकदम ऐसे वॉल्यूम में, राधा गोपीनाथ प्रभु देख रहे थे, इतना छोटा सा बच्चा इतना इंटेंसिटी से ऐसा हिला रहा है महाराज, हरे कृष्ण। तो फिर बाकी के ग्रुप वाले उठे तो राधा गोपीनाथ प्रभु पूछे कि सब अपनी मालाएं दिखाओ। उसके झोली में माला ही नहीं थी। क्यों उन्होंने पूछा? क्योंकि वो इतना ऐसे ऐसे करके और आवाज ही नहीं आ रही कुछ अंदर से। तो हमारी हालत ऐसी है कि अगर वो माला छूट भी जाए तो वो कौन से ब्लैक होल में जाके गिरे ढूंढते रह जाएंगे, कहां मिलेगी नहीं। अर्जुन का फोकस देखो कि अर्जुन उस घूमती हुई मछली के आंख के प्रतिबिंब में देख के उसको मारना है। और ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने और क्या नाम था उनके पिताजी का? द्रुपद। द्रुपद ऐसा नहीं कि द्रुपद ने अर्जुन को कहा था कि पांच चांसेस मिले, पांच, एक ही एक चांस बस, एक चांस में, नहीं तो खत्म। तो ये था अर्जुन का फोकस, और ऐसे फोकस्ड अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? तो फिर हम, वो जो बोलते ना हिंदी में, हम कौन से खेत की गाजर हैं या मूली जो भी। तो भगवान ने अर्जुन का ये श्लोक सुना, और ये श्लोक सुनने के पश्चात भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दूर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशय, बिना संशय के अर्जुन जो तुम कह रहे हो वो सच है। 16 आने सच। तो सोचो, हम लोग केवल फर्स्ट वर्ड सुन लें, भगवान कह रहे हैं 16 आने सच, मन चंचल है, प्रमाती है, बलवान है, दृढ़ है, चलो भैया पुस्तकें बंद करो, खोलो बोतले। तो हम, भगवान कह रहे हैं कि मन, नो डाउट माइंड इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। दुर्निग्रह, बहुत मुश्किल है इसको निग्रह करना। दुर्निग्रह दो चीजें खाली, अभ्यास और वैराग्य। देखो भगवान ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, हालांकि 8 कारण हमने देखे उसके अनियंत्रित होने का, भगवान ने केवल 2 उपाय दिए, अभ्यास और वैराग्य। तो हम देखेंगे कि ये जो रामबाण उपाय भगवान ने दिया, अभ्यास और वैराग्य का, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे साधना में, हमारी साधना भक्ति में ये 2 अड़चने आती हैं। कौन सी अड़चने? जप करते समय और श्रवण करते समय। अपने विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर कहते हैं कि जप करते समय और श्रवण करते समय या तो आलस्य या तो नींद आएगी। यदि नींद नहीं आएगी तो फिर मन यहां वहां भागेगा, इधर उधर देखते हुए, रडार जैसे, उसको बोलते हैं रडार जप। रडार जप मतलब वो रडार जैसे घूमता रहता है ना, देखता रहता है, अच्छा अच्छा यहां पर से खतरा आ रहा है, यहां पर से खतरा, यहां पर ये, वैसे तो हमारी आंखें खुली है लेकिन वो मन रडार के जैसे, अच्छा अच्छा इधर चलना है, इधर करना है, वो करना है, दिवाली पे ये करना है, दिवाली के बाद वो करना है, बोनस भी लेना है। तो वो है विक्षेप, और यदि वो विक्षेपित नहीं हो रहा है कहीं पे, कोई मूड नहीं कहीं यहां वहां जाने का, रडार भी बंद है, तो फिर डुलकियां मारते रहते, आलस्य। अब देखो ये जो 2 अड़चने हमारे साधना भक्ति में श्रवण कीर्तन के लिए जो आती हैं, इन 2 अड़चनों के लिए भगवान ने जो 2 रामबाण उपाय दिए हैं, अभ्यास, तो आलस्य के लिए अभ्यास है और विक्षेप के लिए वैराग्य। तो ऐसे ध्यान में रखना है, ए फॉर ए, वी फॉर वी, विक्षेप के लिए वैराग्य और आलस्य के लिए अभ्यास। तो आलस्य क्यों आता है? भगवान के विषय में हमारे अंदर आलस्य क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। जिससे हमें प्रेम है उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति कभी हमें आलस्य नहीं आएगा। जैसे कोई क्रिकेट मैच का प्रेमी है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल रात के 2 बजे, बिना पलक झपके उसे एकटक देखता रहेगा। उसी को आप माला लेकर बिठा दो 10 घंटे सोने के बाद भी, माला जैसी हाथ में ली नींद आना शुरू। क्यों? क्योंकि कोई प्रेम नहीं उस माला में, और जहां प्रेम है वहां पर आलस्य बिल्कुल नहीं दिखता। तो प्रेम कैसे जागृत होगा? अभ्यास के द्वारा। उसने वो क्रिकेट के प्रति भी प्रेम कैसे जागृत किया? अभ्यास के द्वारा। सभी लोग बोले अरे क्रिकेट नहीं देखता, अरे क्रिकेट नहीं खेलता, अरे क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ये वो बोल बोल के उसको करवा करा के फिर बाद में हाँ हाँ ऐसे करके। तो और विक्षेप का कारण होता है राग आसक्ति, आलस्य का कारण है निरासक्ति भगवान में, विक्षेप का कारण है आसक्ति इंद्रिय भोग, समझ गए? तो उसके लिए वैराग्य। अब देखिए प्रभुपाद ने हमको इस्कॉन में जो दो चीजें दी हैं, कैसे प्रभुपाद ने भगवान द्वारा कहा गया ये श्लोक अभ्यास के तौर पर, श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला जप दिया है, वैराग्य के तौर पर श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 नियम, परफेक्ट सॉल्यूशन प्रभुपाद ने जो दिया है, भगवान जो बोलते हैं ना संप्रदाय में पारंपरिक सॉल्यूशन प्रभुपाद ने दिया। तो यदि हमें हमारे मन को नियंत्रित करना है तो भगवान का ये जो कहा गया श्लोक असम शयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, इसको यदि व्यवहारिक रूप से हमें अपने जीवन में उतारना है तो प्रभुपाद द्वारा कहे गए ये दो चीजों का पालन करना है, 16 माला और 4 नियम, अभ्यास और वैराग्य। अब आज के श्लोक के द्वारा भगवान ये बताए कि कैसे जो स्थूल है वो जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है और शक्तिशाली बनता जाता है। अब यहां पर देखिए डल मैटर जड़ पदार्थ, जड़ वस्तु को लिया, उसके ऊपर हमारी इंद्रियां, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के ऊपर मन, और भी सूक्ष्म होता जा रहा है, जड़ से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा से सूक्ष्म है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से सूक्ष्म है परमात्मा, परमात्मा से सबसे ज्यादा सूक्ष्म है भगवान। और देखिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हमें डायरेक्टली जो सबसे सूक्ष्म जो सबसे शक्तिशाली है उनकी डायरेक्ट भक्ति दी है इस युग धर्म के द्वारा। तो इस सीक्वेंस को समझने के बाद हम महाभारत के एक प्रसंग से सीखेंगे कि कैसे स्थूल से सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। अब यहां पर महाभारत में बताया गया है कि जितने अलग अलग अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए जाते वो जितने सूक्ष्म होते उतने शक्तिशाली होते, जैसे कि परमाणु, परमाणु बम क्या है? सूक्ष्म है इतना है इसलिए इतना शक्तिशाली है परमाणु बम, एटॉमिक बम। एक है दिवाली का बम, एक है एटॉमिक बम। तो क्यों एटॉमिक बम इतना शक्तिशाली है? क्योंकि सूक्ष्मता की शक्ति उसके अंदर नियोजित है। तो ऐसे महाभारत में जितने शस्त्र सूक्ष्म होता होते जाते उतने शक्तिशाली होते जाते। अब यहां पर मैं आपको एक शस्त्र के विषय में नहीं बताऊंगा, परंतु कर्ण अर्जुन का जब युद्ध आमने सामने उनका आमना सामना उनका हुआ तो अर्जुन ने देखा कि कर्ण केवल उतने ही शक्तिशाली नहीं, अर्जुन से कुछ दृष्टिकोण में ज्यादा शक्तिशाली कर्ण था, और भगवान कृष्ण भी जानते थे। तो कर्ण, हमने एक बार हमारे रविवार के क्लास में इसके विषय में कहा कि कर्ण हालांकि अर्जुन का ही भाई था, बड़ा भाई, अर्जुन का बड़ा भाई कर्ण, ज्येष्ठ पांडव, ज्येष्ठ कुंती पुत्र। तो कर्ण दुर्योधन के संग में वो दुराचारी बन गया। तो वैसे ही जो हमारा सही अहंकार है, सही अहंकार क्या है हमारा? भगवान के हम दास, इस ट्रू ईगो, वो जब दुर्योधन के संग में आ जाता है तो वो मिथ्या अहंकार बनता है, फॉल्स ईगो बनता है। तो वही कुंती, ज्येष्ठ कुंती पुत्र दुर्योधन के संग में बनता है कर्ण। तो फॉल्स ईगो, तो अब फॉल्स ईगो जो कि इतना सटल है हमने उसकी श्रृंखला देखी। तो अब अर्जुन कर्ण को मारना चाह रहे थे, तो हम जानते हैं कि अर्जुन कर्ण का रथ का पहिया अटक गया और वो कर्ण जब नीचे उतरा पहिए को निकालने के लिए, तब भगवान ने कहा अर्जुन को अब मारो इसको। अब उस समय अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि नहीं नहीं ये समय नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, ये निहत्ता है, लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि निहत्ते को मार डाला। तो उस समय अर्जुन का अहंकार सामने आ रहा था, अर्जुन के क्षत्रिय अहंकार बीच में अवरोध डाल रहा था। और उस समय भगवान ने कहा कि अहंकार के ऊपर विजय अहंकार से भी जो नम्र है या सूक्ष्म है वो है विनम्रता। अहंकार यदि एक शस्त्र है तो अहंकार से सूक्ष्म शस्त्र कौन सा है? नम्रता। और अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण के सामने विनम्रता दिखाकर उनको शरणागत होकर उनके आदेश का पालन किया, तब कर्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। सो कर्ण इज लाइक फॉल्स ईगो, अर्जुन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकेम ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, ऑल्दो इट वॉज काइंड ऑफ अ स्टिग्मा ऑन अर्जुन टू किल कर्ण लाइक दैट, बट ही टुक हम्बल पोजिशन एंड देयरफॉर ही कुड विन ओवर फॉल्स ईगो। तो ये हम इसलिए बता रहे थे कि कैसे जितना सूक्ष्म या कोई वस्तु या कोई भावना होती है उतनी शक्तिशाली वो बनती है। अब श्रील प्रभुपाद की विशेष व्याख्या कि आज का श्लोक पिछला श्लोक हम कहे थे कि पिछला श्लोक योगियों के लिए, आज का श्लोक भक्तों के लिए। तब देखिए पिछले श्लोक में 41वें श्लोक में ये सीक्वेंस है, लस्ट के ऊपर कंट्रोल करने का सीक्वेंस क्या है, कौन सा श्लोक था पिछला? इंद्रियाणाद्यो, सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रिय को कंट्रोल करोगे तो मन कंट्रोल में आएगा, मन को कंट्रोल करोगे तो बुद्धि कंट्रोल में आएगी। तो पिछला श्लोक उसका सीक्वेंस भगवान ने यह बताया, इंद्रिय मन इंटेलिजेंस। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं सबसे सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करो, बुद्धि कंट्रोल में आए तो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रिय को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए 41वां जो श्लोक था वो योगियों के लिए, क्योंकि जो योगी हैं अष्टांग योग के द्वारा पहले इंद्रियों को निग्रह करते हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि, ये योगियों के लिए बताया गया भगवान कि पहले अपने इंद्रियों को। इसलिए जैसे आप देखो इस्कॉन के अंदर कोई पहले आता है तो सबसे पहले उसको चार नियम नहीं बताए जाते, उसको पहले माला ले जब शुरू कर, वो क्या है डायरेक्टली इंटेलिजेंस से शुरू हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द सटल। तो यहां पर भक्ति योगियों के लिए आज का श्लोक जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं पहले बुद्धि, तो वो जो लाइन आज के श्लोक में जो लाइन है मनसस्तु पराबुद्धि, तो आपको याद होगा ये जो परा शब्द है ये कौन सा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, तो भगवान ने बुद्धि को स्त्रीलिंग कहा है। तो आपको याद है क्यों भगवान ने बुद्धि को स्त्रीलिंग कहा, पिछली बार हमने इसको डिस्कस किया था, क्यों भगवान ने आज के श्लोक में बुद्धि को स्त्रीलिंग कहा है? नहीं याद? क्योंकि अंतरंगा शक्ति भगवान की श्रीमती राधा रानी, हरी बोल, याद है कुछ आया था थोड़ा थोड़ा, भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, जब तक कि हमारी बुद्धि श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण नहीं करेगी, तब तक उसके अंदर वो शक्ति नहीं आएगी मन और इंद्रिय को संयम में लाने के लिए। तो जो भक्ति योगी हैं वो सबसे पहले श्रीमती राधा रानी से याचना करते हैं कि आप हमारे बुद्धि को सही राह पर लाओ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की विशेष व्याख्या कि आज के श्लोक में जो श्रृंखला भगवान ने दी है वो इंटेलिजेंस माइंड और सेंसेस है, पिछले श्लोक में उल्टा सेंसेस माइंड और इंटेलिजेंस। अब हमारे अंतिम मुद्दे पर आते हैं आज के इस चर्चा के, कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में भी अगासुर वध इस लीला को हमारे अनियंत्रित मन से उसकी तुलना करके बताया। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं इस लीला को कि अघासुर कंस द्वारा भेजा गया जो पूतना और बकासुर का भाई था। अघासुर कौन से रूप में आया? इस सर्प के रूप में आया अघासुर, और अपना जबड़ा खोले हुए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, जबड़ा खोले हुए अघासुर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कृष्ण उसके मुंह में आएंगे तो वो खा जाए कृष्ण को और मार डाले। तो हम एक 5 मिनट का इनका अघासुर वध का वीडियो देखेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि क्या शिक्षाएं हैं अघासुर वध से। लाइट्स लाइट्स हाँ, अघासुर वध भगवान ने जिस तरीके से किया, हालांकि अघासुर का उद्धार हुआ, भीड़ थोड़ा ज्यादा जमा हो गई लगता है तो इसलिए मैं ये दिखाना चाहता था, मैं बोलना नहीं चाहता था इस लीला को। तो यहां पर अब हम फिर से आते हैं हमारे अनियंत्रित मन की तुलना किससे की गई है और इस लीला से हम क्या सीखते हैं। तो प्रभुपाद कहे कि यहां पर अघासुर ग्वाल सखा भगवान के और भगवान स्वयं, तो अघासुर की तुलना की गई है मन से। जैसे आपने देखा वो अपना पूरे दोनों जबड़े खोल के हुए खड़ा हुआ था अघासुर, वैसे हमारा मन पूरा खुला रहता है कलयुग में। आओ कितनी इंद्रिय वस्तुएं अंदर आ सकती हैं। तो अघ का अर्थ है पाप, संस्कृत में अघ अर्थात पाप, तो इसका नाम था अघासुर। वैसे ही हमारा जो मन है वो इस कलयुग में पापी मन है। कौन सा मन है? पापी मन, अघ मन अगर हम कहें तो अब ये मन जब अपना मुंह खोलकर खड़ा रहता है तो जो ग्वाल सखा उनकी तुलना किससे की गई है? अब हमारी इंद्रियों से। प्रभुपाद ने ग्वाल सखाओं की तुलना इंद्रियों से की गई कि ये जो मन अपना जबड़ा खोलकर अघासुर की तरह खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, तो इसके अंदर प्रवेश करने के लिए हमारी इंद्रियां लालायित रहती है, जैसे वो ग्वाल सखा इतनी लालायित कि भगवान को छोड़ दिया पीछे और अंदर जाना है। और भगवान कृष्ण कौन है? चिल्ला रहे थे ना भगवान, मत जाओ वो अघासुर है वो खा जाएगा। तो वैसे ही शास्त्र हमारी इंद्रियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि इस मन के वशीभूत मत हो। शास्त्र क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ग्वाल सखाओं को कि मत जाओ उस अघासुर के मुंह में, परंतु फिर भी वो सुनते नहीं, शास्त्र की बातें सुनता नहीं, हमारी इंद्रियां नहीं सुनती। और होता क्या है, मन जो कि अघासुर है उसका उद्धार हुआ एक ही वजह से कि इंद्रियां तो उसके ग्वाल सखा तो उसके अंदर प्रवेश कर गए उसके मुंह में, तो अघासुर ने तब तक अपना मुंह बंद नहीं किया था, ओनली वन क्वालिटी अघासुर हैड, ही अलाउड कृष्णा टू एंटर. तो हमारे अनियंत्रित मन के लिए एक ही आशा की किरण है, यदि वो भगवान को अंदर आने के लिए मुंह खोल कर रखे, जैसे अघासुर. तो जब अघासुर ने, आपने देखा होगा कि जब भगवान प्रवेश कर दिए तब उसने अपना मुंह बंद किया, और फिर भगवान उसके पूरे मुंह के अंदर इतना विशाल रूप की उसका पूरा मुंह भगवान ने अपने शरीर से भर दिया. अच्छा, मैं इसके विषय में कह रहा था कि मुझे हर समय प्रश्न था कि बाकी असुरों का वध जब भगवान ने किया तो भगवान कभी अपने शरीर को बड़ा नहीं किए उनको मारने के लिए. पूतना हो, चाहे तृणावर्त हो, शकटासुर हो, भगवान छोटे से बने रहे. परंतु अघासुर के लिए भगवान अपना शरीर बड़ा किए. क्यों? क्योंकि अघासुर के मुख में भगवान की भगवत्ता को देखने के लिए कोई नहीं था. बाकी असुरों का वध भगवान ने सबके सामने किया, इसलिए वो लोग देखने वाले वहां पर थे. परंतु अघासुर के मुख में जो ग्वाल सखा और गौवें बंदर इत्यादि, वो सब वहां पर बेहोश थे, वो लोग देख नहीं पा रहे थे भगवान, और अकेले भगवान अघासुर के मुख में. इसलिए भगवान ने सोचा मैं अपनी थोड़ी भगवत्ता यहां पर अघासुर को दिखाता हूं. तो इसलिए भगवान अपना रूप बड़ा किए और पूरे उसके मुंह में भर गए भगवान. तो प्रभुपाद लिखते हैं, अघासुर वॉज फिल्ड विथ कृष्णा. वेरी नाइस स्टेटमेंट प्रभुपाद. अघासुर वॉज फिल्ड विथ कृष्णा. सिमिलरली व्हेन अवर माइंड इज फिल्ड विथ कृष्णा, देन ओनली दैट अघ कैन टर्न इनटू प्रेम. देन ओनली दैट सिनफुल माइंड कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कृष्णा लविंग माइंड. और ये प्रभुपाद ने अघासुर वध से हमको शिक्षाएं दी. तो हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है. हमारा मन अगर अघासुर की तरह पापी क्यों ना हो, मुंह खोलकर इंद्रियों को खाने के लिए उस लेटा हुआ है, परंतु यदि वो अनुमति दे दे भगवान को एंट्री करने के लिए अपने अंदर, किसके द्वारा? महामंत्र के द्वारा. इसलिए ये महामंत्र वो है, वो कृष्ण का रूप है जो हमारे अघासुर रूपी मन के अंदर प्रवेश कर इसको भक्त में परिणित कर ग्वाल सखाओं को, हमारे इंद्रियों को शुद्ध कर हमारे इस काया को भगवत धाम ले जा सकता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. और अगले बुधवार हमारे इस तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहां पर भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहो, तुम आध्यात्मिक शक्ति से इस काम शत्रु को जीतो. तो यदि इसे हमें जानना है तो अगले बुधवार को इसी समय इसी स्थान पर हम मौजूद हो जाएं. तीसरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक. जय श्री प्रभुपाद की. ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की. ताई गौर प्रेमानंदी.
हरे कृष्णा. तो ये हमारा कार्तिक महीना चालू हुआ है, तो आज के जो दीपक के प्रायोजक है, लैम्प स्पॉन्सर है, उनका नाम मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट लगाना चाहूंगा. नेहा अग्रवाल माताजी, अमित देसाई प्रभु, देशमुख परिवार, हमारे कौर माताजी, इनके सारे माताजियों का ग्रुप, जगदीश शेट्टी प्रभु और संजीव भरतरी, इन सब ने मिलके आज के जो दीप दान है वो स्पॉन्सर किए हैं. तो इन सारे भक्तों को हम तीन बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल. और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार कार्यक्रम के लिए आए हो, उनको हम निवेदन करते हैं केवल दो मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए. जो भी भक्त हमारे मंदिर में इस सत्संग कार्यक्रम में पहली बार आए, केवल दो मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए.